ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यारज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरण्णुमीरिदे मत्तु यार दिव्यध्वनियु लोकहितवमाडिदे मूरु लोकदल्लि यार कीर्ति व्याप्तवागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे यार ज्ञान पाप कर्म गेद्दु शुद्धवागिदे अमितवाद शक्तियिंद सकल तत्व तिलिदिदे लोकदल्लि वीतराग पूज्य पदवि वंदिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलेयु बागिदे पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की संसारी जीव अपने अपने परिणामों के आधार से भावों के आधार से हमें भविष्य में क्या होना है इस बात की तैयारी इसी भाव में इसी जन्म में इसी पर्याय में कर लेते हैं। किस गति में जाना यह गति को बांधने से नहीं होता आयु को बांधने से होता है। यह बात ध्यान में रखने लायक है। गति का बंध जीव को कोई भी हो सकता है चार में से निरंतर हो सकता है। चारों गति का बंध होता रह सकता है। नरक गति का बंध भी हम कर सकते हैं देव गति का मनुष्य गति का और त्रिरिंच गति का भी हम बंध कर सकते हैं परंतु आयु कर्म का बंध जीवन में हम एक ही बार करते हैं। जीवन के टोटल आयु में से दो भाग निकल जाने के बाद तीसरा भाग जब बच जाता है उसमें आठ चांस प्राप्त होते हैं बंद के और आठ चांस में से एक चांस में हमको आगामी आयु का बंद होता है। आगामी आयु का बंद होने के बाद हमारी गति निश्चित हो जाती है। गति तब तक निश्चित नहीं होती जब तक आयु कर्म का बंध न हो। गति तब तक निश्चित नहीं होती जब तक कि हम चार में से किसी भी एक आयु का बंध नहीं करते। मान के चले हम अपने जीवन में बहुत आरंभ बहुत परिग्रह के तीव्र परिणामों को लेकर के कभी परिणाम किया तो समय में नरकायु के बंध के योग्य परिणाम तो हो सकते किंतु नरकायु का बंध न होकर केवल नरक गति का ही बंध हुआ। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, बहुत हिंसा, बहुत संग्रह प्रवृत्ति और उसमें संक्लिश प्रवृत्ति, तीव्र कषाय की प्रवृत्ति, ये किस गति के? नरक गति का बंध होगा। और जो नरक गति के बंध के कारण हैं, वे ही नरकायु के बंध के कारण भी हो सकते हैं। किंतु हमारा वह दो भाग व्यतीत नहीं हुआ है और हम 40-60 साल की यदि उम्र है टोटल, और हम अपनी यात्रा अभी 30-25 के बीच में व्यतीत कर रहे हैं, और बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, बहुत संक्लेश परिणाम परिग्रह को लेकर के हो रहा है, तो उस समय गति का बंध अवश्य होगा, नरक गति का बंध अवश्य होगा। किंतु यह गति का बंध छूट सकता है, संक्रमित हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है, परंतु आयु का बंध हो गया तो कभी भी उसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इससे यह सिद्ध होता है कि दो भाग में आप कुछ भी अपराध करें, माफ है। तीसरे भाग में यदि आप अपराध करते जाते हैं तो आयु कर्म आपको माफ नहीं करता। आयु कर्म कहता है नरकायु का बंद हो चुका है और तुमको नरक गति फिक्स हो गया है और चलना है। तो आयु कर्मम शरणम गच्छामि, वहां पर अन्य कोई कर्म शरण के योग्य नहीं है। जिस आयु कर्म का बंध हमने किया है उसी आयु के अनुसार हमें जाना पड़ेगा। जरा सोचने की बात है, समझने की बात है। 40 वर्ष तक अगर हमारे लिए वैराग्य नहीं हुआ कोई बात नहीं, माफ है। पर तीसरा भाग जो बचा है उसके अंदर भी यदि हम अपने जीवन को समेट लेते हैं तो 40 तक साल तक किए हुए सारे गुनाह अपराध हमारे लिए माफ हो सकते हैं। साधना हम यदि बचपन में नहीं कर सके तो 55 तक न जाएं, 55 से पहले 40 की ओर आगे न बढ़े। आयु कर्म माफ नहीं करता, ये निश्चित बात है। गति नाम कर्म माफ कर देता है आपको, और अंत में क्या होता है, जिस आयु को हम बांधते हैं, 40 साल तक आपने अपराध किया और 40 के व्यतीत होने के बाद बंद के 8 चांस आ गए और उस 8 चांस में हमने अपने परिणामों को सुधारा, हमने अपने परिणामों को संभाला, अपने परिणामों को शुभ रखा, यथार्थ मार्ग पर रखा, कषायों को कंट्रोल में किया, आत्म साधना की ओर हमारा लक्ष्य गया, तो निश्चित बात है कि वह गति नाम कर्म जो बार बार नरक गति नाम कर्म का भी बंद क्यों नहीं हुआ हो, उस सारे को हम बदल सकते। तो शुभ परिणामों के माध्यम से मान लो देव गति का बंद हुआ अपने को, तो देव आयु का बंद हो जाएगा। देव आयु का बंध हो गया तो देव गति का, नरक गति का, त्रिरंच गति का, इन तीनों गति नाम कर्म का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? देव गति में हो जाएगा, एक बच जाएगा देव गति नाम कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो रूपांतरित हो सकते हैं एक दूसरे में, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं एक दूसरे में रूपांतरित नहीं होते। नरकायु को बांधा, उसको रूपांतरित करके देवायु को बांधना चाहते हैं तो हजार बार भी कोशिश करें, कैसा भी शुभ परिणाम रखें, चेंज होने वाला नहीं है। धरती पर चल पड़े और मिट्टी के ऊपर चल रहे हैं तो अपने कदम तो छपेंगे, और एक बार छप गया तो छप गया, वो मिटेगा नहीं। कदम नहीं छापना चाहते हैं तो आकाश से चले, विद्या प्राप्त करें, ऊपर हो जाएंगे। ये कर्मों की विचित्र लीला है, हम सभी कर्मों के बंधन में पड़े हुए हैं। यह बंधन हमारे लिए यद्यपि स्वीकार नहीं है, लेकिन बंधन को तोड़ने के प्रति हमारा प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, हम साहस नहीं जुटा पाते, इसलिए बंधन ज्यों का त्यों रहता है। ये कर्म का बंधन आज का नहीं, अनादिकाल का है, और यदि हम पुरुषार्थ में कम पड़ते हैं, साधना में कम पड़ते हैं, चिंतन में कम पड़ते हैं, विचार में कम पड़ते हैं, तो निश्चित है यह बंधन टूटने वाला नहीं है। गतिबंध निरंतर बंद होता है, गति निरंतर बंदी कर्म है, आयु निरंतर बंदी कर्म नहीं। जीवन में एक बार अंतर मुहूर्त के लिए बंद गया तो काम हो गया, गति नाम कर्म निरंतर बंधता रहता है परिणामों के अनुसार। जैसे अभी आप प्रवचन सुनने में, स्वाध्याय करने में लीन हैं, कौन से आयु का बंध हो रहा होगा, गति का, देव गति का बंध हो रहा है, देव गति का बंध हो रहा है, और मग्नता है जब तक देव गति का ही बंध होता रहेगा, और एकाएकी मन तो मन है उछल जाता है, दुकान में चला गया दुकान में चला गया और वहां विचार करने लगा जाकर के, इस ग्राहक को ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा फंसाना है तो किस गति का बंद होगा, सब मालूम है त्रिरेंच गति का बंद होगा। और घर में गए, दुकान से घर में गए, भूख लगी थी, भोजन बना ही नहीं था, क्या आया, क्रोध आया, अभी तक भोजन नहीं बना, क्रोध आया, यह क्रोध किस गति का बंद कराएगा, नरक गति का बंद कराएगा, नरक गति का। और जब तक क्रोध के परिणाम है तब तक नरक गति का बंद होता रहेगा, जब तक परिणाम माया कषाय के उदय से मायाचारी के रहते हैं तब तक त्रिरेंच गति का बंद होता रहेगा, अंतर्मुहूर्त तक होता रहेगा। और यह भी नियम है कि एक कषाय अधिक से अधिक एक अंतर्मुहूर्त काल तक ही रहती है, उसका रहने का काल ही अंतर्मुहूर्त है, और उसके साथ हम भी कषाय के अनुरूप अंतर्मुहूर्त तक ही किसी भी गति का बंद करते, आयु कर्म के लिए भी अंतर्मुहूर्त का ही बंध पर्याप्त है, बंध हो जाता है। भोजन नहीं बना था, क्रोध आया, अब उस क्रोध में निर्णय लेता है मत बनाओ, हम भी बना के खा लेंगे, हम बनाएंगे। उस गुस्से में अहम बना गया, तो कौन सी कषाय आ गई? मान कषाय। तो मान कषाय के काल में किस गति का बंध होगा? मनुष्य गति का बंध होगा। मान से मनुष्य गति का, क्रोध से नरक गति का, माया से त्रिरंज गति का, और लोभ से देव गति का बंध होता है। तुम्हारा सबसे अच्छा तो लोभ कषाय है। ऐसा नहीं, तीव्र लोभ करेंगे तो देव गति में भी तो एक देव दुर्गति है। तीव्र लोभ ही लोभ कषाय के उदय से देव गति का भले ही बंद करे, लेकिन भवनत्रिक में जाएगा। भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष देव बन सकता है, यह लोभ का फल है। लोभ का फल, ये तीन पर्याय अच्छी थोड़ी है। है तो देवगति, लेकिन इसमें प्रवेश करने वाला जीव सम्यक तो हीन होकर के ही प्रवेश करता है। चाहे त्रिरंज जीव जा रहा हो, चाहे मनुष्य जा रहा हो, दो ही गति के जीव वहां जाते हैं। और कौन जाते हैं? संगी पंचेंद्री त्रिरंज जाता है, या तो असंगी पंचेंद्री। असंगी स्वर्ग में नहीं जाता, भवनत्रिक में जाता है। संगी जीव स्वर्गों में भी जा सकता है और भवनत्रिक में भी जा सकता है। धर्म करके, धर्म से फल की अपेक्षा पाने वाले कहां जाते हैं? ज्यादा से ज्यादा बहुलता से भवनत्रिक में ही जाते हैं। किंतु तीव्र लालसा, तीव्र इच्छा, देखो कषाय तो है, लोभ कषाय का उदय है। हम इच्छा करते हैं, किंतु उस इच्छा के साथ साथ उस लक्ष्य को बांध करके हम साधना कर रहे हैं। वह लक्ष्य भी लोभ है। उस लोभ के साथ साथ यदि हम अपने परिणामों को शुक्ल लेशा के अंदर लाएंगे, तो भवनत्रिक नहीं, नव ग्रहवेग तक जा सकते हैं। नव ग्रहवेग तक शुक्ल लेशा रहेगी तो नौ ग्रहवेग तक है लोभ। लोभ के फल स्वरूप देवगति ही मिल रही है, क्योंकि त्याग तपस्या भी है, पुण्याश्रव भी हो रहा है, मंद लोभी है। तो मंद लोभ का परिणाम यह है कि वह ग्रहवेग तक चला जाता है। और वह लोभ जैसे जैसे तीव्र होगा, लेशा स्थान चेंज होंगी, लेशा स्थान चेंज हो जाएंगे और वह नीचे आता जाएगा। तीव्र लोभ ही धर्म करता है तीव्र लोभ से, तो वह भवनत्रिक में जाता है। भवनत्रिक में, और इसलिए सम्यक दर्शन तो रहता ही नहीं, और सम्यक दर्शन को घात करके ही जा सकता है। बताया है सम्यक दृष्टि मनुष्य और सम्यक दृष्टि तिरेंज, जो सम्यक्तु का निर्दोष 25 दोषों से रहित होकर पालन करते हैं, वे मंद कषायी हैं। ये कैसे मंद कषाय? इनके पास अनंतानुबंधी चार चतुष्क ही नहीं, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ ये कषाय है ही नहीं। क्यों नहीं है? ऐसी मंद कषाय है, ऐसी इतनी मंद कषाय है कि वह व्यक्ति मनुष्य या तिरंच जीव दोनों के लिए बताया जा रहा है। वो दोनों जीव यदि सम्यक दृष्टि हैं तो सम्यक्त्व के काल में कभी भी धर्म के लिए इन्हें धर्म करके धर्म से धन की कामना नहीं करेंगे। धर्म से जो धन की कामना करता है वो कामना किस क्वालिटी की? अनंतानुबंधी की है। धर्म से धन की अपेक्षा रखें, ये अनंतानुबंधी कषाय है। और धन को ही धर्म के लिए लगाएं तो ये अनंतानुबंधी नहीं है। अनंतानुबंधी को उसने हटाया है। और किसको उदय में रखा है? फिर शेष तीन को उदय में रखा हो सकता है, होता है। अब प्रत्याख्यानावरण का उदय रहेगा एक बात, या तो प्रत्याख्यानावरण का या तो संज्वलन का। तो प्रत्याख्यानावरण का उदय है और सम्यक दृष्टि है, तो यही तो इन परिणामों की तो विशेषता है, महिमा है, कि ये परिणाम आपको देवायु के बंध में ही निमित्त पड़ेंगे, ये गलत गति में आपको ले जा नहीं सकते। सम्यक दृष्टि है तो देवायु का ही बंध होगा, देव गति का ही बंध होगा, नरक गति का बंध नहीं होगा। देखो, नरक गति का और नरक आयु का, एक गति नाम कर्म है और एक आयु नाम कर्म है, इन दोनों के बंध के लिए कौन सी कषाय चाहिए? तो अनंतानुबंधी चाहिए। गुणस्थान कौन सा होता है अनंतानुबंधी का उदय रहे तो? पहला हो सकता है या तो दूसरा हो सकता है। यदि दूसरे में है तो वहां पर भी कषाय मंद रहती है, इसलिए नरकायु का बंध नहीं होगा। तीव्र कषाय होना चाहिए और पहले गुणस्थान में रहना चाहिए जीव को। पहले गुणस्थान में ही नरक गति और नरकायु का बंध होता है। चौथे गुणस्थान में जाकर के कितनी भी कषाय कर लो, तीव्र कषाय, लेकिन रहना चाहिए अप्रत्याख्यानावरणी कषाय। उदय में अप्रत्याख्यानावरणी क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, कितना भी तीव्र बना लो इनको, आपको नरक गति का और नरकायु का बंध होगा नहीं है। नरकायु का बंध नहीं होगा, नरक गति का बंध नहीं होगा। किसका होगा? हाँ, सम्यक दृष्टि यदि है तो देव गति का ही बंध करेगा। देव गति का ही बंध करता है। क्षायिक सम्यक दृष्टि भरत, भरत चक्रवर्ती बाहुबली के ऊपर चक्र चला करके चलाने के परिणाम हो गए। इसका मतलब क्या? चक्र क्या करता है मालूम नहीं था, वो तो संहार करता है। चौथे गुणस्थान वाले हैं भरत चक्रवर्ती। जब बाहुबली के साथ लड़ रहे हैं तो चौथे गुणस्थान से लड़ रहे हैं ना, मैदान चौथे गुणस्थान का ही है वो वो भी सम्यक दृष्टि है और ये भी सम्यक दृष्टि है और दोनों ये आत्मा है क्षायिक सम्यक दृष्टि थे और सर्वार्थ सिद्धि से यहाँ अवतरित होकर मनुष्य पर्याय में जन्मे हैं और तीर्थंकर के पुत्र बने दोनों। क्षायिक सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती के अप्रत्याख्यान के तीव्रोदय में, तीव्र कषाय के उदय में क्रोध तो है ही है, हमसे कुछ नहीं बन रहा है तो गुस्से में आकर के चक्र रत्न चलाने के भाव आ गए और चक्र रत्न चलाया तो लेशा कौन सी होगी? शुक्ल लेशा? हाँ, अशुभ लेशा। अशुभ में कौन सी होगी? छह लेशाएं हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल, छह लेशाएं हैं। इन छह में से कौन सी हो सकती है चक्र चलाते समय? कृष्ण लेशा। अप्रत्याख्यानावरणी क्रोध के उदय में कृष्ण लेशा बन सकती है, फिर भी चक्र चलाते समय भी वह तीन आयु का बंद नहीं करेगा, तीन आयुओं का बंद नहीं करेगा। उनको मनुष्य गति का बंद नहीं होगा, उनको त्रिरंच गति का, त्रिरंच आयु का बंद नहीं होगा, नरकायु का बंद नहीं होगा, तो कुछ देवायु का बंद होता रहेगा, देवगति का बंद होता रहेगा। होगा होगा, क्या बात हो गई, होगा। किंतु उस वक्त कैसे होगा प्रश्न उठता है। शुभ परिणामों से देवगति का, देवायु का बंद होता है, उस समय कैसे होगा? तो उस समय नहीं होगा, रुक सकता है। यदि ऐसा कहें कि रुक सकता है तो गति को तो निरंतर बंदी कहा है, और कोई कोई कर्म ऐसा है सांतर बंदी भी है और निरंतर बंदी भी है। सांतर यानी छूट करके पुनः बंद होता है, और कोई छूटता नहीं, निरंतर ही बंद होता रहता है। ऐसे कई कर्म हैं जो छूट करके पुनः बंधते हैं, रुक जाता है, पुनः बंद प्रारंभ होता है। पहला बंधा, रुका, फिर बंधा, बंधना प्रारंभ हो गया, ऐसा भी होता है। तो चक्रवर्ती रत्न, चक्र रत्न चला रहा है, इस समय लेशा अशुभ है, पाप कर्म का बंद होगा कि नहीं? पाप कर्म का बंद होगा, लेकिन गति और आयु में से तीन का तो होगा ही नहीं, यहां निषेध है। भले ही उस समय के लिए वह रुक जाए, किंतु होगा नहीं, तीन आयु का बंद तो निषेध है। सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि मनुष्य नहीं बन सकता, सम्यक दृष्टि त्रिरंच नहीं जा सकता, नरक भी नहीं जा सकता, जाएगा तो नियम से देव गति में ही जाएगा। कई लोग इच्छा रखते हैं कि महाराज हम तो सम्यक दृष्टि है, हमको तो सीधा ही विदेह क्षेत्र में जाना चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तीर्थंकरों का सानिध्य मिलना ही चाहिए, और भावना भी भाते हैं कि हम इसी उद्देश्य से सम्यक दर्शन धारण किए हैं कि विदेह क्षेत्र में जन्म हो जाए। कैसा विचार है, देखो विदेह क्षेत्र में जन्म लेने के लिए सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। इस भावना से सम्यक दर्शन धारण किया है कि, परंतु ये भावना साकार हो जाएगी क्या? ये नहीं होने वाली है। तीर्थंकर का सानिध्य मिलेगा, परंतु आप विधेय क्षेत्र में जन्म लेंगे ये असंभव है, सानिध्य मिलेगा, मरण के अंतर्मुहूर्त बाद ही तीर्थंकर के पास आप पहुंच जाएंगे, अंतर्मुहूर्त बाद, पर जन्म लेकर के नहीं, मनुष्य गति में जन्म लेकर के नहीं। कहां जन्म लेकर? देवगति में जन्म लेकर, वहां से अंतर्मूर्त के भीतर शरीर बड़ा होता है, आप आ गए वहां समोशरण में, तीर्थंकर तो मिल गए, जो इच्छा थी वो भावना साकार हो गई। परंतु ऐसा लेकर के क्या करोगे? तीर्थंकर के सानिध्य में आपको क्यों जाना था? प्रश्न है, अपने कल्याण के लिए। कल्याण किसमें है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करने में कल्याण है। तो सम्यक दृष्टि तो है ही, आप क्या धारण करोगे? पूर्व भव से ही सम्यक तो लेकर के वहां जन्मे और सम्यक दर्शन के साथ ही समोज शरण में आए। अब तीर्थंकर के पास क्यों जा रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं। सम्यक दर्शन तो है, अब क्या लाभ करना है आपको? तो अभी एक चारित्र है ना, उसको भी लेकर के आत्म कल्याण करे, ये भी तो भावना थी पूर्व भव में। परंतु वह देव पर्याय से क्या साकार बन जाएगी भावना? नहीं बनेगी। आपको इतना शॉर्टकट रास्ता नहीं मिलने वाला है। सम्यक दृष्टि यदि है तो शॉर्टकट रास्ता मोक्ष जाने का या संयम धारण करने का नहीं है। आपको एक स्टेशन पर रुकना ही पड़ेगा। रुकना ही पड़ेगा। कहां रुकना पड़ेगा? देवगति में रुकना पड़ेगा। देवगति आपका स्टेशन है, वहां पर रुक करके आराम से रहना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, कितने साल तक? असंख्यात वर्ष तक रुकना पड़ेगा। और महाराज यदि ऐसा है तो ये ठीक नहीं है, हम मिथ्या तो ही रहते हैं, यही अच्छा है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव मनुष्य भी बन सकता है, नरकायु का भी बंद कर सकता है, देव गति में भी जा सकता है और तिरंज गति में, चारों गति खुले हैं मिथ्या दृष्टि जीव के। तो फिर हम सम्यक दर्शन धारण नहीं करते, यही ठीक है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, वो कर लो फिर। फिर उसको करते करते मनुष्य कैसे बनेंगे, ये भी मार्ग पता रहना चाहिए। गारंटी है क्या कि मनुष्य ही बनेंगे? मनुष्य बनेंगे आपके हाथ में है क्या? मनुष्य आयु को ही हम बंद करेंगे? परिणाम आपके हाथ में है, ये ठीक बात है, लेकिन हर समय आप जागृत रहेंगे? मनुष्यायु के बंद के जो परिणाम है वो तो हमेशा करते रहेंगे, मान लो हमेशा कर रहे हैं, लेकिन हमेशा करते रहें, सावधानी से रहें, ये आपके हाथ की बात है क्या? इतना जागृत कौन रहेगा? इतनी सावधानी कहां से आएगी? तो ये कोई गारंटी नहीं है कि मिथ्या तो होने पर मनुष्यायु का ही बंद आप नियम से करेंगे, ऐसा कोई उपाय नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। एक स्टेशन लगता है, लगने दो, लेकिन वही ठीक है। ये तो लॉटरी जैसा है, बंद हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। लॉटरी का क्या भरोसा? दे दिया आपने 500 रुपया और टिकट खरीद लिया, लेकिन 500 जा भी सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं। क्या भरोसा? इसलिए अपन को ये रास्ता नहीं ढूंढना है कि हम जल्दी से जल्दी विदेश क्षेत्र में जन्म लें और वहां से तीर्थंकर के सानिध्य में मोक्ष जाएं। भावना भाव, लेकिन सीधा जाने का भावना तो ये ठीक नहीं। सीधा जाने वाले जीव भी हैं, शास्त्रों में उनकी भी चर्चा आई है। तुलोपन्नति में कहा है, ऐसे भद्र मिथ्या दृष्टि जीव, वो कौन है उनका नाम नहीं लिया, और किस काल में उत्पन्न होंगे इसका भी कथन नहीं है, और वो किस गांव में रहेंगे, शहर में रहेंगे, इसका भी कथन नहीं है। किंतु इतना जरूर कहा है, पूरे 21,000 वर्ष में 123 जीव यहां भरत क्षेत्र से 21,000 वर्ष के बीच में 123 भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव मनुष्यायु का बंद कर विदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे और वहां से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। उसका उसमें यदि आपका नंबर है तो ठीक है। कैसे भद्र मिथ्या दृष्टि है,
मरने के बाद कहां जाएंगे?
विदेह क्षेत्र में जाएंगे
डायरेक्ट
विदेह क्षेत्र में जाएंगे, समोक्षरण का लाभ लेंगे, उपदेश सुनेंगे, वहां से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। उनकी संख्या 123 की है। महावीर भगवान की भविष्यवाणी में तो ये आया है, उन्होंने भविष्यवाणी की है तो गलत तो नहीं हो सकता। जो केवल ज्ञान में झलका है उसी का उपदेश हुआ है, परंतु वो कौन है इसका निर्णय ले सकते? उनके परिणाम भद्र रहते हैं, इतने भद्र कि मंद कषायी मनुष्यायु के बंद के जो परिणाम है ना, वो निरंतर उसके रहते, निरंतर। मनुष्यायु के बंद के लिए क्या करना पड़ता है? अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, अल्प आरंभ परिग्रह हिंसा आदि, अल्प अल्प में इंटरेस्ट, ज्यादा में इंटरेस्ट नहीं, अल्प ही हो ज्यादा ना हो, अल्प हो ज्यादा ना हो, ऐसे परिणाम निरंतर। इन परिणामों की साधना वो करते तो हैं, लेकिन स्वभावगत पूर्वगत कोई संस्कार ऐसा आता है उनका कि वे सदा मंद कषायी रहते। बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, बहुत इच्छा, बहुत तीव्र कषाय रखते नहीं। मंद कषाय के कारण मनुष्यायु का बंद हो जाता है और वो विदेह क्षेत्र में जाकर जन्म लेते हैं और मोक्ष चले जाते हैं। जब भी मोक्ष जाएं, दिगंबर तो बनना ही पड़ता है। दिगंबर दीक्षा के बिना किसी को मोक्ष मिलता नहीं है। क्यों महाराज, क्यों नहीं मोक्ष मिलता? तो परिग्रह है इसलिए मोक्ष नहीं मिलता। वस्त्र भी परिग्रह है, एक लंगोटी भी परिग्रह है। एक लंगोटी तक के वस्त्र को भी त्यागने को कहा है, वो भी नहीं चलेगा। मोक्ष सिद्धि के लिए वो भी बाधक है, क्योंकि मन ऐसा है, परिग्रह विदित वस्तु से व मनोगति, परिचित वस्तुओं में बार बार जाता है और वह पापाश्रव करता है। एक लंगोटी भी पापाश्रव का कारण है क्या पुण्याश्रव का? पापाश्रव का। उसके प्रति भी ममत्व भाव, उसके प्रति भी लगाव, उसके जाने से, आने से, रहने से हर्ष विषाद के परिणाम निरंतर चलते रहते हैं। केवल ज्ञान नहीं होगा, उस लंगोटी का विकल्प आएगा, केवल ज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञान की उत्पत्ति के लिए एकदम विशुद्ध परिणाम, निर्विकल्प परिणाम चाहिए। लंगोटी के ओर मन गया तो ये शुभ परिणाम है कि अशुभ परिणाम? ये तो अशुभ परिणाम। अशुभ परिणामों को हटाने के लिए लंगोटी को भी हटाना पड़ता है। लंगोटी हट गई तो अशुभ परिणाम भी हट गए और शुभ में स्थित हो गए। अब इन शुभ परिणामों को भी हटाने के लिए बताया जाता है, शुभ को भी हटाओ। शुभ को भी हटाओ, ये शुभ भी आपको केवल ज्ञान होने नहीं देगा। शुभ विकल्प भी हटाओ। क्या क्या शुभ विकल्प? मुनि बनने के बाद क्या क्या रहता है? ज्यादा से ज्यादा उपदेश देते हैं, विहार करते हैं, जीव दया करते हैं, देख के चलते हैं, ये चलने फिरने के काम जब तक रहते हैं तब तक शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम तो होते ही नहीं मुनि के। बाह्य परिग्रह के बिना अशुभ परिणाम होंगे ही नहीं, बाह्य परिग्रह त्याग है, अशुभ कैसे होंगे? अशुभ के लिए जगह ही नहीं है। तो मुनि महाराज क्या साधना करे? मुनि महाराज ये साधना करे कि आप शुभ शुद्ध को साधो और शुभ को जितना हटाना चाहो हटा दो, शुद्ध को साधो और शुभ को हटा दो। और गृहस्थ के लिए क्या कहा? अशुभ को हटाओ और शुभ को साधो। शुद्ध की साधना तो शुभ को हटाने पर, और अशुभ ही नहीं हटाया तो शुभ को क्या हटाओगे? और अशुभ रहते रहते शुभ तो पूर्ण होता नहीं, क्या हो सकता है? अशुभ को बचाते बचाते शुभ को भी पूर्ण करे संभव है? लंगोटी को बचाते बचाते परिणाम भी शुभ रहे, अशुभ में न जाए, ऐसा हो सकता है? अशुभ में जाएगा ही। दो लंगोटियां रहती है, एक गंदा हो गया तो साफ कहां है, मन ढूंढने लगता है इसको बदलना है। ये विकल्प आते और ये कभी भी आ सकते, कभी भी सामायिक में भी आ सकते। कैसे आ सकते हैं? अरे लंगोटी जो गंदी हो गई थी उसको साफ करके सुखाया था, वो हवा से उड़ा तो नहीं? ये मन कहाँ गया? अशुभ में गया, अशुभ का चिंतन किया। शुभ का चिंतन करने वालों को भी केवल ज्ञान नहीं होता है, तो फिर अशुभ का चिंतन करने वाले को क्या केवल ज्ञान होगा? बाहुबली को तो देखो, सब कुछ छोड़े थे, केवल ज्ञान उनको नहीं हो पा रहा था। अशुभ को पूरी तरह से त्याग चुके थे, लेकिन मन कहां जा रहा था? हाँ? नहीं, जा कहां रहा था? मान कषाय का तो उदय था, परंतु
क्षेत्र
कहां जा रहा था? भटक रहा था,
ये भरत का क्षेत्र
पर वस्तु में ही भटक रहा है ना, आत्मा में नहीं आ रहा है, निर्विकल्प नहीं बन रहा है। ये भूमि भरत की है, मैं उस पर खड़ा हूं, ये भूमि भरत की है, मैं उस पर खड़ा हूं, तो कहां खड़े होना चाहते हो? होना तो उन्हीं की भूमि पर ही खड़ा होना पड़ेगा, और केवल ज्ञान भी उन्हीं की भूमि पर होना है। ये विकल्प क्यों? उनकी और हमारी, हमारी और उनकी, उनकी और हमारी, हमारी उनकी, ये मेरा तेरा जो भाव है ना, ये भी नुकसानदायक है। निर्विकल्प अवस्था की उपलब्धि नहीं हो पा रही है, मन अशुभ में नहीं जा रहा, ये ठीक है। अशुभ क्या चीज है? ये वस्तु मेरी है, ये कहना अशुभ है। और ये वस्तु किसी पर की है तो हमारा कोई उस पर स्वामित्व नहीं, लेकिन पर वस्तु में भी मन जा रहा है और चिंतन कर रहा है, तो क्या उसका चिंतन करते करते केवल ज्ञान होगा? ये उनकी, ये कषाय ही हुआ ना, कषाय को जीते बिना, मान को जीते बिना केवल ज्ञान होने वाला नहीं। और बाहुबली भगवान संज्वलन मान कषाय के उदय से 1 साल तक खड़े रहे, खड़े रहना पड़ा, अपने परिणामों पर पुरुषार्थ नहीं कर पाए। उस समय में वो होता ही नहीं, ध्यान उधर नहीं जाता। जो कुछ पीछे के संस्कार है ना, कुछ मन ने करके आया, कुछ करके आया, कुछ संस्कारित होकर के आया, वे निरंतर परिणाम चलते रहते। और ये विशेष बात है कि एक साल तक खड़े रहे तो भी वो विकल्प नहीं हटा, आता जाता रहा, आता जाता रहा, केवल ज्ञान को रोका रहा। संज्वलन कषाय के उदय में देखो, संज्वलन कषाय के उदय में शुभ भाव ही रहते हैं, अशुभ तो कभी होते नहीं, क्योंकि वस्तु मेरी है, इसका कोई जगत के वस्तुओं का स्वामित्व तो रहा नहीं, किंतु यह वस्तु पर की है ये विकल्प करना भी नुकसानदायक है, ये भी उतना ही बाधक जितना ये वस्तु मेरी है कहना बाधक, ये उनकी है कहना उतना ही बाधक है जितना ये। अंतर्मुखी भाव नहीं हुए, बहिर्मुखी भाव रहे संज्वलन कषाय के उदय में। अंतर्मुखी भाव का मतलब ये किसी का नहीं है, क्यों विकल्प करूं, ऐसे परिणाम होना चाहिए, ये उनका है, क्या विकल्प करने की जरूरत थी।
आखिर उनका मन परिवर्तन होकर
चक्रवर्ती आए ना, समोषण से, हाँ समोषण से उपदेश सुनकर आए और इस विषय समझ करके आए कि ऐसा हो रहा है, तो आ करके उन्होंने इतना ही कहा, ये धरती किसी की नहीं होती, स्वामी नमोस्तु, ये धरती किसी की न हुई है न हो सकती है, मेरे जैसे चक्रवर्ती बहुत सारे हो गए, ये उनकी भी नहीं रही तो क्या मेरी रह सकती है, ये किसी की नहीं। किसी वस्तु को त्याग करने के बाद भी ये उनकी है ये भी विकल्प नहीं आना चाहिए, मैंने ही दिया था या और ये उनकी है। मैंने ही दिया था, मेरी दिया था, मेरी वस्तु दूसरे को दिया था और ये उनकी है, पहले मेरी थी, इस प्रकार का ही चिंतन चलने लगा तो संज्वलन मान कषाय काम करेगा और वो केवल ज्ञान को होने नहीं देगा। निर्विकल्प अवस्था का मतलब मेरी तेरी यह भाव सब समाप्त, ये किसी की नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मेरे मन में किसी के प्रति विकल्प नहीं है, और मेरी वस्तु यहां दुनिया में एक परमाणु मात्र भी कोई मेरी नहीं है। समय सार में कहा है, परमाणु मात्र के प्रति भी विकल्प रहता है तो भी केवल ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान तो होना चाहिए, तो केवल एक परमाणु है, कोई ज्यादा नहीं, बहुत परमाणु से हम अगर इच्छा करते हैं, रखते विकल्प रखते हैं, तो केवल ज्ञान नहीं होना चाहिए, एक ही परमाणु बच गया है और वो भी आंखों से दिखता नहीं, इतना छोटा है, और उसके प्रति रागादि भाव बच गया मन में, उसके प्रति रागादि भाव बच गया है तो भी केवल ज्ञान होने वाला नहीं है। दिगंबर मुनि का क्या अर्थ है, इस दुनिया का एक परमाणु भी मेरा नहीं, मैंने विकल्प छोड़ दिया, एक परमाणु भी मेरा मैं कहूं तो यह अशुभ विकल्प है, और इसको त्यागूं तो मैं शुभ हो गया, ये मेरा है मेरा नहीं है कहना तो शुभ विकल्प है, ये मेरा है कहना अशुभ विकल्प है, और इन दोनों से परे होना ये निर्विकल्प है, निर्विकल्पता है, ये परमाणु मेरी है ये अशुभ विकल्प, ये मेरा नहीं है ये शुभ विकल्प, लेकिन आप यही कहते बैठो ये परमाणु मेरा नहीं, ये परमाणु मेरा नहीं, ये परमाणु मेरा नहीं, केवल ज्ञान नहीं होने वाला है। अरे मेरी तेरी की बात में अटके हो अभी, छोड़ो, केवल ज्ञान नहीं होगा। ये परमाणु मेरा नहीं है, किसको सुना रहे हो मेरा नहीं है, मेरा नहीं।
संलेखना के समय कौन से भाव रहते हैं?
संलेखना के समय, निर्विकल्प हो करके संलेखना करना ही वास्तविक संलेखना है। निर्विकल्प होकर यानी कोई भी विकल्प नहीं करना, शुभाशुभ विकल्प न करते हुए शुद्ध आत्मा में शुद्ध परिणामों को रखकर प्राण त्याग देना चाहिए। इसको पंडित मरण कहते हैं। ये पंडित मरण सप्तम गुण स्थान से प्राप्त होता है, ध्यान अवस्था में प्राप्त होता है। मरण करने को कहा है लेकिन कब मरण करो, हिलते डुलते हुए मरण मत करो, ध्यान में बैठे हुए प्राण छोड़ो, ये निर्विकल्प अवस्था है। प्राण कब जाए? सामायिक के टाइम में प्राण जाना चाहिए, ये सर्वोत्कृष्ट समाधि मरण है। ऐसा नहीं कि समाधि मरण का अर्थ है हमने तो सब त्याग दिया, सभी अन्न जल सब त्याग दिया, अब आजीवन त्याग दिया, अब तो दूसरे को बता रहे हमने त्याग दिया, हम मरण कर रहे हैं और मरण के टाइम बाय बाय टाटा हम जा रहे हैं। बाय बाय टाटा सुनाते हुए मरण करेंगे तो ये छठे गुणस्थान का मरण है, ये सविकल्प मरण है, निर्विकल्प नहीं, ये सविकल्प मरण है। मृत्यु को दुनिया में कैसे कैसे जीव मरते हैं, जिंदगी भर संसार करते हैं और लास्ट में सबको बुलाते हैं, काय के लिए बुलाते हैं? मैं जा रहा हूँ सुनाने के लिए, ये सुनाने के लिए कि मैं जा रहा हूँ, तुम सब संभाल लेना, जरा और रहना था लेकिन जा रहा हूँ, क्या करना। मोह मरण करते समय जो संलेखना के टाइम में क्रियाएं करते हैं सब करते हैं लोग, कोई भी व्यक्ति मरण कर रहा हो क्या खाता पीता मरण करता है? नहीं, अंत टाइम में तो कुछ चीज खाता ही नहीं, और खाने भी लग जाए तो उतरेगा नहीं वो। कैसे उतरेगा? शरीर चाहता है कि अब खूब खिला लिया तुमने, बड़ी अनुकंपा की मेरे ऊपर, अब मत खिलाना, लास्ट में मैं भी वियोग को प्राप्त हो रहा हूं, तुम भी जा रहे हो, शांति से जाए अपन आपस में। प्राण निकलते समय कोई खा नहीं सकता, खाने की इच्छा ही नहीं होगी, शरीर का स्वभाव है, ये अंत में खाता नहीं, और लोग जबरदस्ती में खिलाते हैं कि और जरा जी जाए। पानी डालते हैं और मरने वाला कह चुका है कि मरण के काल में पानी भी नहीं डालना, तो भी ये कोशिश करते हैं कि एक दो दिन और बचे, पानी डालते हैं। तो दो दिन का स्वार्थ इनका, और देखो इनकी भी इच्छा कैसी है, दो दिन और बचे तो दो दिन में क्या करने वाले हैं आप, कौन सा लाभ उठाने वाले उनसे? मरण करते समय तो व्यक्ति को निर्मोह बनाना आवश्यक है, व्यक्ति को निर्मोही बनाओ, निर्मोहता के वचन सुनाओ, उपदेश सुनाओ, बारह भावना सुनाओ, जल मत लाओ, बारह भावना सुनाओ। हाँ, उनकी इच्छा पूछो क्या आवश्यकता है, ऐसा भी मत करो उसकी इच्छा तो खाने की है और आपने कह दिया हे गप तुमको संलेखना मैंने दिया है, तुमको संलेखना दिया है हमने, आहार नहीं मांगना चाहिए, हमने दिया है, तुमने नहीं भी लिया हो तो हमने जबरदस्ती से संलेखना
कुछ याद नहीं
तो संलेखना जबरदस्ती की चीज है क्या? ऐसा देना चाहिए क्या? ऐसा देना तो उसका घात करना है, इसमें वही पाप लगता है जो पाप किसी जीव को मारने में लगता है। संलेखना के नाम से आपने मार दिया और वो संलेखना तो हुई नहीं, उसके पास तो खाने पीने की इच्छा थी और आपने ला करके नहीं दिया, तो भूख प्यास के मारे इच्छा से ही वो मरण को प्राप्त हुआ। संलेखना हो गई, तुमने काय संलेखना करा दी उसकी। काय संलेखना है ये, कषाय संलेखना हुई नहीं, मरण के वक्त भी उसके परिणाम रहे कि मुझे खाना था और ये देर नहीं रहे थे। ऐसा होता है, दूसरे के द्वारा संलेखना नहीं करवाना चाहिए ऐसे लोगों से, जो लोग आप संलेखना क्या होता है समझते नहीं और संलेखना करवाना चाहते। संलेखना एक खेल हो गया, मरते समय मतलब खाना छोड़ना ही संलेखना हो गया, इतना ही मालूम है, कषाय छोड़ना मालूम ही नहीं, छुड़ाना चाहिए छोड़ना चाहिए यही मालूम नहीं है, लेने वाले को भी मालूम नहीं और देने वाले को भी मालूम नहीं, दोनों ही ऐसे। और संलेखना के नाम से ये मरण कराते हैं और वो मरण करते हैं, ये क्या होगा? इससे आहार के बिना मरण किए इसका अर्थ ये थोड़ी ही कि संलेखना हो गई, आहार छोड़ना ही संलेखना नहीं, कषाय को मारना संलेखना है, खाने पीने की इच्छाएं समाप्त हो जाना ये संलेखना है, बाहर से बोलना, किसी से संबंध रखना, किसी की लेन देन, कोई अन्य विकल्प, अशुभ विकल्प, शुभ विकल्प, सबको छोड़ना, शुभ विकल्प को भी त्यागना, ये संलेखना है। संलेखना में तो ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे शिष्य हैं, ये भी विकल्प नहीं रहते, न गुरु न शिष्यो न हीनो न दीनो चिदानंद रूप हम नमो वीतरागम, वीतराग स्तोत्र का स्मरण करता है वो, मेरे यहां कोई भी नहीं है, मैं अकेला आत्मा हूं, अकेला ही आया हूं, अकेला ही जाऊंगा, कोई ये संबंध मेरे नहीं है। जाते समय गुरु शिष्य का संबंध भी टूट जाता है, ये मेरे गुरु हैं ये कहना भी विकल्प का कारण, और ये शुभ विकल्प के साथ मरण होगा तो छठा गुण स्थान, यदि इस विकल्प को भी त्याग दिया और अपने आत्मा में रम गए, मेरा कोई नहीं, मैं न किसी का शिष्य हूं न मेरे कोई गुरु हैं, ये हाईएस्ट लेवल का संलेखना, यहां तक जाना चाहिए परिणाम। लेकिन ऐसा यदि नहीं होता है तो आचार्यों ने कम से कम ये कहा कि नमोकार मंत्र को पढ़ते पढ़ते प्राण छोड़ो, वो नहीं होता है तो वो हाईएस्ट परिणाम है, साधना बहुत चाहिए उसके लिए। पंच परमेष्टि का स्मरण करते करते प्राण छोड़ो, ये कहा। क्यों कहा? ये भी नहीं करोगे तो फिर अशुभ में जाएगा, शुभ को छोड़ने की शक्ति नहीं और शुद्ध में जाने का कोई प्रयास नहीं, मालूम नहीं है, तो कम से कम इतना तो कर लो कि अशुभ की ओर मन न जाए। बाह्य परिग्रह जिसको त्यागा है वो अशुभ परिग्रह है, उसमें मन न जाए, इसलिए पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए प्राण छोड़ो। शरीर भी तो है, शरीर के तरफ परिणाम गए, भाव गए, ये भी विकल्प ही, शरीर संबंधी भी विकल्प छोड़ देता है, यह शरीर मेरा नहीं है, यह अंत में होता है, और जो संलेखना कराने वाले महाराज रहते हैं पास में, निर्यापक आचार्य, जिनका नाम निर्यापक आचार्य, संलेखना कराने वाले बहुत विवेकी रहते हैं, वो बहुत सावधानी रखते हैं, बहुत सावधानी। वो कहते हैं यह शरीर मेरा नहीं है, ये परिणाम भी अंत समय में आवश्यक हैं, और इस शरीर के प्रति जो सेवा वैयावृत्ति चल रही है वो हम देखेंगे, विकल्प मत करो, सब संभाल लेंगे, आप अपने में रहो, आप अपनी साधना करो, शरीर हम देख लेंगे, शरीर के जवाबदारी वो लेते हैं। हीन सनन में ये भक्त प्रत्याख्यान मरण का व्याख्यान है, और उत्कृष्ट सहनन में पहले नंबर का, दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का जो सहनन होता है वे मुनि महाराज तीन सहनन वाले, भक्त प्रत्याख्यान मरण उनको करने की जरूरत ही नहीं, वो इंगिनी मरण और प्रायोगिगमन मरण ये साध सकते हैं। इंगिनी मरण में तो न पर से वैयावृत्ति नहीं करवाते, भक्त प्रत्याख्यान में तो पर से वैयावृत्ति करवाते हैं, छूट है इसमें हीन सनन वाले को। हीन सनन हो तो भक्त प्रत्याख्यान ही होता है, आज पंचम काल में भक्त प्रत्याख्यान मरण ही है, दूसरे की वैयावृत्ति के बिना सही वो समाधि मरण हो ही नहीं था, हो ही नहीं सकता। इंगिनी मरण वाले, ऊपर के तीन सनन में से एक सनन होता है, इंगिनी मरण वाले क्या करते हैं, इंगिनी मरण वाले तो मैं अपने शरीर के प्रति सावधान रहूंगा, जो भी इसमें विकल्प पैदा होगा वो अपने हाथों से ही कर लूंगा, दूसरे से नहीं करवाऊंगा। देखो ये भक्त प्रत्याख्यान से एक सीढ़ी अधिक ऊंची साधना है, वहां तो स्वयं भी करते हैं और दूसरे से भी करवाते हैं वही आवृत्ति। इंगिनी मरण में स्वयं करेंगे लेकिन दूसरे को हाथ लगने नहीं देंगे, अब प्रायोपगमन मरण में न स्वयं करेंगे न परसे करवाएंगे, और क्या करेंगे, समय आ गया मरण का तो आकर के बैठ जाएंगे किसी एक एकांत स्थान पर, चले जाएंगे कहीं गुफा, शिखर, पर्वत इत्यादि एकांत स्थान में चले जाएंगे, वहां बैठ जाएंगे और संकल्प ले लेंगे कि जब तक मरण ना हो, बाल पंडित मरण सिद्ध ना हो, तब तक इस शरीर के प्रति कोई भी सेवा वैयावृत्ति नहीं करेंगे, जो कुछ भी इसका मल मूत्र है वो है, होता रहेगा वही होता रहेगा, वो उठेंगे भी नहीं, कोई उपसर्ग आएगा कोई उस शरीर से मतलब ही नहीं, ऐसा ही रहेगा, जरा भी हिलेंगे नहीं, प्राण जाने तक हिलेंगे नहीं, वो ये प्रायोपगमन मरण है। कोई उपसर्ग हुआ, किसी पशु के माध्यम से एक हाथी आया और मुनि महाराज के शरीर को ढकेल दिया, शिखर पर बैठे थे, शरीर गिर गया और लुढ़कता लुढ़कता नीचे आया और किसी झाड़ी में अटक गया, अटकने के बाद उठ करके आएंगे क्या, संकल्प लिया है हम शरीर हिलाएंगे नहीं, और हाथी ने हिला दिया तो उसने हिला दिया, हमने नहीं हिलाया तो शरीर स्वभावतः जहाँ जाकर के स्वाभाविक रूप से गिरेगा, वहीं पर हिले बिना उसी आसन में जिस एंगल पर गिरे हैं उसी एंगल पर प्राण छोड़ेंगे, वो उसको हिलाएंगे नहीं, इसका नाम प्रायोपगमन मरण। ये उत्तम सनन के बिना नहीं होता, पहला सनन चाहिए, दूसरा सनन चाहिए, या तो तीसरा सनन चाहिए प्रायोपगमन मरण के लिए। इंगिनी मरण और प्रायोपगमन मरण ये दोनों मरण उत्तम सनन के द्वारा होते हैं, और भक्त प्रत्याख्यान मरण चौथे पांचवें छठे सनन के द्वारा भी हो सकता है। ऐसा है मरण काल, समय हुआ। शुरू ही नहीं हुआ ऐसा लगा ना आज।
बता रहे थे इसलिए समय हो गया।
कब निकलता है समझ में नहीं आता।
देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती अतः कहाती जिन वाणी जय वंतो मा जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरो मा अब तक हम विषयांद रहे अब ना हम विषयांद रहे।